ओम शांति। आज श्री कृष्ण जयंती की, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग, उत्साह और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है। जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहनें, माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झूलाते हैं। कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिलकर के, संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं। तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही है और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं? और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाई, वहां तक किसी कृष्ण के साथ श्री राधे भी है, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मनाते जितनी श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वहां तक कि हर कोई, माताएं बहनें ये चाहना रखती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा प्राप्त हो। कई बहनें सोचती है श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, तो कई गोप सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण जैसा सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की रहती है, और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधेरी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी, और ऐसे समय में उसका जन्म होता है। और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए एक तो नहीं है। अब दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था? जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं वो 16 कलह संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात, क्या कारावास होता है, जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन है, और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि, जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सत्युगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है, अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्युगी दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देव कुल की आत्माएं थी, उन सब देव कुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला श्री कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है और जहां वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती है, और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्म में उसको अनेक नामों से जाना गया है, ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा। और वो सतयुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए। 8 जन्म होने कारण और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है, अर्थात 8ों जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण हो, तो वहां जाने की इच्छा लालसा हर आत्मा को होती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं, आठों जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 90वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। आठों जन्म की जयंती फुल हमने मनाई, उसके बाद 90वें नंबर पर श्री राम आए, तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है, जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है, और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था उसको कहते हैं सूर्यवंशी, और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिति में है, और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ, इसीलिए श्री राम चंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप, और श्री राम त्रेता युग में। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, आठों जन्म की जयंती मनाएं, और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है, तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाए। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। उन्हीं शुभ वचनों के साथ सबको पुनः बहुत बहुत जन्माष्टमी की मुबारक हो। मुबारक हो। ओम शांति।